नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और अर्जेंटीना तथा स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप दास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता के प्रम्बानन मंदिर जाएंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी एल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
हमारी संवाददाता ने बताया है कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की अनूठी छटा देखने को मिलती है।
पिछले 26 वर्षों से भारतीय देवी देवताओं की प्रतिमाओं, पूजा सामग्री, रंग बिरंगे भारतीय परिधानों और पारंपरिक वस्तुओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचित करा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में स्टोर की संचालिका किम होलोवाइट ने बताया कि बड़ी संख्या में न्यूजीलैंड के लोग हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ भारतीय परिधानों और आध्यात्मिक परंपराओं में भी गहरी रुचि दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का शांति, प्रेम और सकारात्मकता का संदेश लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। ऑकलैंड से मंजू मीणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए।
अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा में अब केवल 4 वर्ष शेष हैं। एक रिपोर्ट।
अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के
विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2015 में 2030 सतत विकास कार्य योजना को अपनाने के बाद निवेश, बेहतर नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने विश्व भर में अरबों लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। लगभग 100 करोड़ लोगों को सुरक्षित पेयजल और 120 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता की सुविधा मिली है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 2024 के बीच नए HIV संक्रमणों में 30% की कमी आई है। और
अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।